नमस्कार दर्शक मित्रों, आज एक ऐसे विषय को लेके और एक ऐसे व्यक्ति विशेष को लेकर हम आपके सामने आ रहे हैं जो विषय के लिए इनसे अच्छा मैं नहीं मानता कोई हमारे दर्शक मित्रों के सामने मार्गदर्शन मिलने के लिए उपस्थित हो सकता है। डॉक्टर श्याम पित्रोड़ा जी कोई इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है, हमारे आए हमारे हमारे गौरव हैं और हमें नाज है। हम कई तरह की डॉक्टरेट की कई देशों से डिग्रियां, ये सब मैं नहीं जाता इंट्रोडक्शन में, मगर हमारे यहाँ टेलीकॉम रेवोल्यूशन जो हुआ उसके जनक के रूप में पित्रोड़ा जी का नाम सर्वविदित जाना जाता है। और भी कई टेक्नोलॉजी मिशन के वो हेड रहे और प्राइम मिनिस्टर के एडवाइजर के हैसियत से भी उन्होंने अपने देश की ये प्रगति में काफी बड़ा योगदान दिया है। स्वागत है सर आपका।
जयनारायण भाई, थैंक यू।
सर, कहा जाता है आजकल की नॉलेज इज द पावर एंड वन हु हैज द अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। सेकंड थिंग दे से द टेक्नोलॉजी विल इन्वेड एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, one who adapt to it shall prosper, one who doesn't shall disappear like dinosaur. And the third hypothesis says that the pace at which the technology will change will be so great that if one sleeps in the night, रात को अगर सो गए और सुबह में आपने अपने आप को refresh नहीं किया, update नहीं किया, तो आप outdated हो जाएंगे। सर, इसको मद्देनजर रखते हुए आज की चर्चा का हमने आयोजन किया है और हम नहीं मानते कि आपसे ज्यादा अधिकृत एक्सपर्ट हमें इसके लिए मिल सकता था, इसलिए फिर एक बार हमारे दर्शक मित्रों की ओर से और मेरी व्यक्तिगत हैसियत से मैं आपका शुक्रगुजार हूँ।
धन्यवाद
सर। ये ज्ञान का प्रभाव बढ़ता जाता है, टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन बढ़ता जाता है, कई नए इन्वेंशन आते हैं, उसके साथ साथ मानव जीवन भी प्रभावित होता है। क्या मानना है आपका, किस तरह का प्रभाव आने वाले समय में, अगर हम ज्यादा ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे क्योंकि द पेस एट विच द टेक्नोलॉजी इज गोइंग टू चेंज विल बी सो ग्रेट कि अगर हम कहेंगे आज से 50 साल बाद तो शायद हमें कल्पना भी नहीं होगी उस तरह के चेंजेस होंगे। हम 20 साल की बात करें कि आज से 20 साल के बाद भारत किस तरह की टेक्नोलॉजी ड्रिवन परिस्थितियों से प्रभावित होगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ये सवाल बहुत जरूरी है और ये सवाल के बारे में सोचना उतना ही जरूर है। सबसे पहले हमें समझना है कि विज्ञान के बिना भविष्य नहीं है, देयर इज नो फ्यूचर विदाउट साइंस। देखिए 150-200 साल पहले लोग कैसे जीते थे, सब जगह रोग थे, न इलेक्ट्रिसिटी थी, न टेलीफोन था, जिंदगी बहुत कठिन थी 200 साल पहले, लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, गरीबी बहुत थी, ट्रांसपोर्टेशन कोई जात का नहीं था। अब आप देखिए 200 साल में क्या हो गया, जो 2,00,000 साल में नहीं हुआ वो शायद आखिरी 20 साल में हुआ। So, सबसे पहले यह समझना है कि साइंस वो हमारा भविष्य है। मुझे बहुत दुख होता है कि हमारे वहां साइंस की चर्चा बहुत कम होती है और धर्म की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। हम पीछे देखना जानते हैं, हम आगे देखना नहीं जानते। अब साइंस में तीन फोर्सेस एक ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स। ये तीन फोर्सेस ने हमारी दुनिया बदल दी। टेक्नोलॉजी ये वैसी चीज है जो साइंस का उपयोग करके लोगों की सुविधाएं बढ़ाती है। टेक्नोलॉजी इज ऑल अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, क्या समस्या आप हाथ में लेते हैं और उसके लिए कैसे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए, कॉस्ट कम की जाए, एफिशिएंसी बढ़ाई जाए और नए नए रास्ते निकाले जाए कि जिससे काम सरल बने, ये है टेक्नोलॉजी। अब सच बोलिए तो सब चीज में टेक्नोलॉजी लगी है। टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में चाहिए कि कौन से बीज लगाएंगे, कब लगाएंगे, हाइब्रिड बीज का क्या फायदा होगा, कौन सा फर्टिलाइजर लगाएंगे, कहाँ स्टोर करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे, प्राइस कैसे डिसाइड करेंगे, कोल्ड स्टोरेज कहाँ लगाएंगे। सो फूड एंड एग्रीकल्चर इज फुल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब तो सैटेलाइट इमेजरी, जियो हाइड्रोलॉजिकल सर्वेज, ये सब टेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है। हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन देखिए पास्ट में, इट वॉज ऑल अबाउट टेक्नोलॉजी एंड साइंस। एक जमाना था लोग कहते थे कि हिंदुस्तान के लोग अपना खुद अनाज नहीं बना सकेंगे, देश भूखा ही रहेगा। अब देखिए नॉट ओनली वी कैन फीड 1.5 बिलियन पीपल, लेकिन हमारे वहां सरप्लस अनाज भी है। ये टेक्नोलॉजी और टेक्नोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट की कमाल है। वैसे टेक्नोलॉजी चाहिए पीने के पानी के लिए, सैनिटेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पावर एनर्जी के लिए, कम्युनिकेशन देखिए कैसे कम्युनिकेशन देश में बदल गया। एक जमाना था हमारे वहां 10 साल लगते थे टेलीफोन कनेक्शन के लिए, हमारी टेलीफोन डेंसिटी 2 भी नहीं थी, यानी कि हर 100 लोगों में 2 लोगों के पास फोन था। आज टेलीफोन डेंसिटी 85 हो गई है, यानी हमारे देश में 1.5 बिलियन लोगों के पास 1.2 बिलियन टेलीफोन्स हैं। ये सब कैसे हुआ, क्योंकि साइंस ने हमें, टेक्नोलॉजी ने हमें रास्ता बताया। सेलुलर फोन आए, कॉस्ट कम हो गई, इंप्लीमेंटेशन डिसेंट्रलाइज हो गया, गवर्नमेंट पॉलिसी बदली गई कि जिससे प्राइवेट प्लेयर्स कुड कम इन द पिक्चर एंड इट रियली फ्यूल्ड द ग्रोथ। लेकिन इसके लिए ट्रांजिस्टर की टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी। जो ट्रांजिस्टर इन्वेंट नहीं हुआ होता, जो 1947 में हुआ, तो कम्युनिकेशन कंप्यूटर इतना आगे नहीं बढ़ता। सो टेक्नोलॉजी तो एक लाइफलाइन है। कोई भी ऐसा फील्ड नहीं है अभी जिसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग न किया गया हो। लेकिन देखिए क्या कमाल की चीज है कि 500 लोगों को साथ उड़ा के 500 माइल की स्पीड पे हजारों माइल तक चलता है और एक नहीं दो नहीं मिलियंस ऑफ प्लेन्स फ्लाई ऑल ओवर विथ ग्रेट डील ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी। ट्रेन देखिए, टेलीविजन, कंप्यूटर्स, सो ये सब में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा काम है। टेक्नोलॉजी कहां से आती है? ज्ञान से। आपको समझने के लिए ज्ञान चाहिए, आपको उसमें शोध करने के लिए ज्ञान चाहिए, आपको उसे आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान चाहिए। सो नॉलेज हैज बिकम एन इंपॉर्टेंट कमोडिटी। आज से करीबन इवन 50 साल पहले ज्ञान लाइब्रेरियों में और यूनिवर्सिटी में भरा पड़ा था। मैं आपको एक सिंपल दाखला दूं कि जब मैं अमेरिका आने वाला था 1964 में, तब मुझे एक यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ जानना था कि कौन से कोर्सेज पढ़ाते हैं। तो उसके लिए मुझे बड़ौदा से एक ट्रेन लेनी पड़ी। रात को मुंबई पहुंचा, मुंबई अमेरिकन एम्बेसी में गया, वहाँ पे यूएस इंफॉर्मेशन सर्विस की छोटी सी लाइब्रेरी थी, वहाँ गया, किताब मांगी, मुझे 15-20 मिनट किताब दी गई। वो किताब में मैंने जो पढ़ा उसका उसकी नोट्स मैंने की एक पेज में पेंसिल से, और फिर ट्रेन पकड़ के दूसरी रात बड़ौदा पहुंचा। एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के लिए मुझे 2 दिन लगाने पड़े, ट्रेन में जाना पड़ा, खर्चा किया। आज वही इंफॉर्मेशन मैं कंप्यूटर में जाऊं तो न तो एक यूनिवर्सिटी, हजारों यूनिवर्सिटी के बारे में, उनके प्रोफेसर के बारे में, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में सब चीजें इंटरनेट पे मिलती है। देखिए 50-60 साल में क्या फर्क हो गया एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। अब ज्ञान लाइब्रेरी में नहीं रहा है, अब ज्ञान लाइन पे आ गया है, अब ज्ञान यूनिवर्सिटीज में नहीं रहा है। आपको पढ़ना हो तो आप कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। समझिए आपको अभी सीखना है कि वाइन कैसे बनाना हो और रेफ्रिजरेटर कैसे रिपेयर करना हो और एक्सरे मशीन कैसे चलता है जानना हो, ऑल यू हैव टू डू इज गो ऑनलाइन, गेट इंफॉर्मेशन एंड एजुकेट योरसेल्फ। सो नॉलेज डेमोक्रेटाइज हो गया है, जिससे नॉलेज सब जगह पहुंच गया है। गुजरात के एक छोटे से गांव में बैठा हुआ बच्चा न्यूयॉर्क घूम सकता है इंटरनेट पे, पेरिस देख सकता है, हिमालय माउंटेन्स की टूर ले सकता है और इतना सारा सीख सकता है कि पूरी जिंदगी तक ज्ञान से भरा खुद का जीवन बन सकता है। सो ज्ञान हैज बीन डेमोक्रेटाइज एंड इट इज पावरफुल, नॉलेज इज पावर। मैं मेरे खुद का एग्जाम्पल देता हूं कि हमारे पिताजी 4 किताब पढ़े थे, हमारे दादा, हमारे चाचा न तो पढ़े न लिखे, पूरी जिंदगी उनकी गई कि न न्यूज़पेपर पढ़ सके, न कोई रोड पे साइन पढ़ सके। वैसी फैमिली में से जब हमें एजुकेशन दिया गया और हमारे पेरेंट्स ने ध्यान दिया कि बच्चे लोगों को अच्छी तरह से पढ़ा सके, कॉलेज में गए, फिजिक्स पढ़े, अमेरिका आए, तो सबसे पहले तो हम दूसरी दुनिया अपने जीवन में बिता सके, साइंस की दुनिया। लोग भूल गए कि हम एक बढ़ाई के बच्चे हैं। एजुकेशन कैन रीडिफाइन योरसेल्फ, एजुकेशन कैन गिव यू अपॉर्चुनिटीज, ओपन डोर्स, इतने दरवाजे उनसे खुल जाते हैं। लेकिन एजुकेशन लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। एजुकेशन ऐसा नहीं कि आप कॉलेज में गए और कुछ डिग्री ले ली, वहां से तो शुरुआत होती है। एजुकेशन तो पूरी जिंदगी चालू रखना है। एजुकेशन से आपकी जिंदगी नॉट ओनली एनरिच होगी, लेकिन आपकी पहचान भी बदल जाएगी। सो आई थिंक एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
जी सर।
सो ये आपने लंबा जवाब दिया आपके छोटे प्रश्न का।
नहीं, ये अच्छा किया आपने, क्योंकि इससे पूर्व भूमिका बिल्कुल ठीक से जम गई। इसको मुझे आगे बढ़ाते हुए आपसे पूछना है सर।
प्लीज।
आपने बिल्कुल सही कहा कि एजुकेशन जो है वो फाउंडेशन है, और जितना आप ठीक से उसको कर लें, आगे उसमें सुपरस्ट्रक्चर अच्छी तरह बिल्डअप हो सकता है। मगर सर, हमारे यहाँ इससे उल्टा है। अभी एक रिपोर्ट आया है सर का, जो कहता है कि 9th या 10th स्टैंडर्ड का बच्चा 2nd स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक को नहीं पढ़ सकता। अब दुनिया की बात करें तो पहली 150 यूनिवर्सिटी में हमारी एक भी यूनिवर्सिटी का नाम नहीं है। 152nd नंबर पे IIT बंबई आती है। तो सर, ये हम दुनिया इस ओर जा रही है। आपने ठीक बिल्कुल ठीक कहा कि आने वाले समय में नॉलेज विल बी द पावर, एंड नॉलेज विल बी ए सॉर्ट ऑफ कंटिन्यूअस थिंग, दैट यू कांट लर्न वंस एंड देन कीप इट असाइड। तो सर, ये परिस्थिति में 1.5 बिलियन लोगों का ये देश, यहाँ जो परिस्थिति है, जो जिस तरह की शिक्षा दीक्षा दी जाती है सर, दुनिया के संदर्भ में हम कहां पहुंचेंगे?
डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय उन्होंने नेशनल नॉलेज कमीशन बनाया था, जिसमें करीबन 9-10 लोग प्रोमिनेंट एक्सपर्ट्स इंडिया के 3 साल तक लगाए गए। उन्होंने एक इतना अच्छा रिपोर्ट तैयार किया, इट इज कॉल्ड रिपोर्ट ऑफ द नेशनल नॉलेज कमीशन, जिसमें 5 चीजों पे ध्यान गया था, दिया गया था। एक, नॉलेज इंस्टीट्यूशंस, दूसरा नॉलेज कॉन्सेप्ट्स, तीसरा नॉलेज क्रिएशन, नॉलेज एप्लीकेशंस एंड नॉलेज इन गवर्नेंस एंड सर्विसेज। ये रिपोर्ट 27 विषय पे 300 रिकमेंडेशन वाला रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट में ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए देश में, स्कूल के एजुकेशन के लिए, कॉलेज के एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सिटी रिसर्च, हाउ डू वी गेट मोर PhDs, हाउ डू वी गेट अवर इंजीनियरिंग कॉलेजेस, एंड ऑल दैट हैज बीन डॉक्यूमेंटेड। अब सवाल कहाँ खड़ा होता है आजकल कि सरकार बहुत सारी चीजों में ज्यादा दखल देती है। एजुकेशन एक ऐसा विषय हो जब सरकार को जवाबदारी लेनी है, लेकिन वो कर देते हैं प्राइवेटाइज, और प्राइवेटाइजेशन होने से लोग खाली बिजनेस मॉडल पे ध्यान देते हैं। तो सब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस हैं, वो बहुत पैसे बनाते हैं, लेकिन एजुकेशन कितना देते हैं वो कोई नहीं पूछता। हमारे टीचर्स are not qualified. So if teachers are not qualified, how are they going to teach students? So बहुत सारे सवाल हैं जिस पे हमने ध्यान नहीं दिया है, लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि the information age will make every student a self-learner. अभी क्या है कि हम बच्चों को कहते कि आप ये पढ़िए वो पढ़िए, लेकिन हम बच्चों को खुद को जो पढ़ना है वो पढ़ने नहीं देते। देखिए सबके माता पिता की यही इच्छा होती है कि हमारा बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, लेकिन बच्चे को साथ दूसरा कुछ बनना हो। तो एक तरफ से हमारे बच्चे को टीचर्स अच्छे नहीं है, प्रोत्साहन नहीं मिलता है, तो वो आगे पढ़ने में ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इतना बड़ा देश है, इतने सारे लोग हैं, तो भी आईआईटी में एग्जाम के लिए 3-4-5 लाख लोग एग्जाम देते हैं। तो एक तरफ बहुत ही होशियार स्टूडेंट है और दूसरी तरफ बहुत ही वीक अनक्वालिफाइड स्टूडेंट है। सो हमें सबका एवरेज बढ़ाना है, हमें ऐसा सिखाना है लोगों को, बच्चों को, कि 5वीं 7वीं चौपड़ी में और किताब क्लास में कक्षा में जो उनको आना चाहिए, रीडिंग राइटिंग कॉम्प्रिहेंशन मैथ साइंस, वो ध्यान से सिखाना चाहिए। सो इट इज अ चैलेंज, बट होपफुली ये नई टेक्नोलॉजी, नए टूल्स जो आए हैं जिससे बच्चे खुद सीख सकेंगे, जिससे उनका उत्साह नई चीजों में बढ़ेगा। अभी तो क्या है कि जो टेक्नोलॉजी है हमारे वहां वो बॉलीवुड और क्रिकेट में यूज की जाती है, सब बच्चे गेम्स खेलते हैं कंप्यूटर पे, गाना सुनते हैं और क्रिकेट मैच देखते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझाया गया है कि ये तो आपके पास लाइब्रेरी है आपके हाथ में, एंटरटेनमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है, आपके पास दुनिया की लाइब्रेरी है, इसको एक्सप्लोर करिए, किताबें पढ़िए, उसमें साइंस समझिए, देश देश की टूर लीजिए, हमारे देश के बारे में समझिए, हमारी नदियां, हमारे पहाड़, हमारे जंगल्स, हमारे स्टेट्स, ये सब ज्ञान की चीजें हैं, लेकिन लोग ज्ञान में ज्यादा ध्यान नहीं देते, वो गॉसिप में गप लगाने में लड़ जाते हैं। और हमारी सरकार भी यही प्रोत्साहन देती है कि आप पॉलिटिकल गॉसिप में लग जाइए, झूठ को एम्प्लीफाई करिए, एक दूसरे को लड़ाइए, हेट प्रोपगेट करिए, ये ज्ञान नहीं है, ये अज्ञान है। सो हमें बहुत दुख होता है जब हम देखते हैं कि आपके हाथ में जो लाइब्रेरी है पूरी, उसका आप ठीक से उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये बच्चों को समझना है, पेरेंट्स को समझना है, टीचर्स को समझना है। तो आपकी बात सच है कि हमें स्टैंडर्ड बढ़ाना है।
सर वैसे कहा जाता है कि सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वो है जो आपको मुक्ति दिलाती है। अगर आप पढ़ाई के बाद भी अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, आप अपनी खुद की रोटी कमाने के लिए काबिलियत नहीं रखते, तो वो क्या आज की जो शिक्षा पद्धति है उसका दोष है, पढ़ाने वालों का दोष है, या फिर हम ऐसे प्रोडक्ट बाजार में रखते हैं जो बाजार के लिए आउटडेटेड है, क्या मानना है इस बारे में आपका?
आज का एजुकेशन जो है वो अभी भी पुराने ढंग से पढ़ाया जाता है. इट हैज नॉट केप्ट पेस विद द नीड्स ऑफ द आवर. हम वही पुरानी चीजें पढ़ाते हैं और हम स्टूडेंट्स को जिस चीजों की जरूरत है, नॉट जस्ट टू इंक्रीज योर ज्ञान बट ऑल्सो टू अर्न. सी मैनी पीपल वॉन्ट टू लर्न टू अर्न बट देर आर पीपल हु वॉन्ट टू लर्न बट मोस्ट ऑफ द पीपल वॉन्ट टू लर्न टू अर्न. सो हम सबको बी ए करवा देते हैं, लॉ डिग्री ले देते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि आपको जरूरत है कि आप इलेक्ट्रिशियन का पढ़िए, प्लम्बिंग का पढ़िए, वेल्डिंग का पढ़िए, उसमें भी साइंस है, उसमें भी टेक्नोलॉजी है, उससे आपको काम जल्दी मिलेगा. और काम तो सब जगह खाली पड़ा है, देश में इतना सारा काम है अगर आपको करना हो तो. लेकिन आप खड़े रहिए वैसे और बोलिए कि हमें काम दीजिए, और हमें ऐसा काम दीजिए जो हम पैर ऊंचे लगा के बैठे रहे ऑफिस में, वैसा तो काम नहीं मिलेगा. सो वी हैव टू ट्रेन पीपल टू डू द वर्क दैट नीड्स टू बी डन. देश में देखिए गार्बेज कलेक्शन इज ए मेजर चैलेंज, एनवायरमेंट इज ए मेजर चैलेंज, इंप्रूविंग एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड फार्मर्स इनकम इज ए चैलेंज, वाटर सैनिटेशन इज ए चैलेंज. जहां भी देखिए आपको लगेगा कि इतना सारा काम बाकी है, कौन करेगा? एजुकेटेड लोगों को ही करना है. लेकिन उसके लिए आपको खुद को अंदर से ऐसा होना चाहिए कि पढ़ के मैं जॉब क्रिएट करूंगा, जॉब लूंगा नहीं. अभी तो क्या है, सब लोगों को ऐसे पढ़ाया जाता है कि जैसे ही आप कॉलेज की डिग्री खत्म करें बोले हमारा जॉब कहाँ है. कोई ऐसा नहीं कहता कि नाउ आई विल क्रिएट जॉब्स बिकॉज आई एम एजुकेटेड. बट एवरीबडी वॉन्ट्स टू टेक ए जॉब एंड नॉट क्रिएट ए जॉब. लाखों जॉब क्रिएट हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन में, हाउसिंग में, नए नए, लेकिन ये जॉब ऑल्सो क्रिएट होंगे स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज में. बड़े बड़े कारखाने में इतने जॉब नहीं बनेंगे. जॉब्स विल ऑल्सो गेट क्रिएटेड इन रूरल एरियाज. अभी तो क्या है कि सब इनकम अर्बन एरिया में खींची जा रही है, हमें उससे उल्टा करना है. हमें ऐसे जॉब क्रिएट करने हैं जैसे इनकम अर्बन से रूरल तक जाए. आज तो रूरल की इनकम अर्बन में आ गई है. सो रूरल कम्युनिटी को हमने सक कर लिया. सो ज्ञान और काम साथ साथ होना चाहिए. ज्ञान से काम बढ़ेगा और काम से ज्ञान बढ़ेगा. यू कैन नॉट सेपरेट दीज टू थिंग्स.
सर, विथ द कंट्री बिकमिंग द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑन द ग्लोब, द डायमेंशंस ऑफ द प्रॉब्लम्स, बी इट वाटर सिक्योरिटी, बी इट फूड सिक्योरिटी, बी इट एनर्जी सिक्योरिटी, व्हाटएवर, आर ऑल्सो इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली. तो आने वाले समय में सर, ये जो जो जिस तरह की समस्याएं जिस स्वरूप पे हमारे सामने आ रही है, उस समस्याओं को हल करने में ज्ञान का उपयोग कैसे कहाँ किया जाएगा सर? और आपने बिल्कुल सही कहा सर कि पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी, ये इसमें से हमें बाहर निकलना होगा, नौकरी दाता बनना होगा, नौकरी लेने के लिए क्यों में खड़ा नहीं रहना होगा। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर ये कौन बदलेगा या साइकी बदलेगा कौन सर? अभी तक की तो सरकारें जो है वो अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इतने करोड़ नौकरियां देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, हम मुफ्त में ये देंगे। तो सर कहाँ जा रहे हैं हम? कहीं हमारी पॉलिसीज गलत है या सोच गलत है, क्या गलत है हमारी?
नहीं, हमने ऐसा कल्चर किया है कि लोग ये मानते हैं कि हमारा प्रॉब्लम कोई दूसरा सॉल्व करेगा। लोग ऐसा नहीं समझते कि हमारा प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। अब आप देखिए देश में 750 डिस्ट्रिक्ट्स है, रफली 700 समझिए, हर डिस्ट्रिक्ट में टीचर्स चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, पीपल हु क्लीन स्ट्रीट्स चाहिए, यूनिवर्सिटीज चाहिए। सो अगर सब अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में ध्यान दे और कहे कि मुझे जॉब मेरे गांव में करना है, क्योंकि गांव में बहुत सारी चीजें बदलनी है, लेकिन क्या होता है जैसे कुछ एजुकेशन मिला वो गांव छोड़ के चला जाता है, कहीं मुंबई जाएगा, कलकत्ता जाएगा और ऐसी जगह जो लाखों लोग आए हैं जॉब के लिए, फिर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो लोगों को लोकल प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं विथ लोकल टैलेंट, लोकल कैपेबिलिटीज। सो सरकार को यह समझना है कि लोगों को लोकल सुविधाएं देनी है। अब देखिए छोटे धंधे वालों को बैंक से लोन नहीं मिलती, आप लोन लेने जाइए, स्मॉल बिजनेस, यू वांट 5 लाख 50 लाख, वोंट गेट इट। बट आप बड़े बिजनेस हैं, 2000 करोड़ चाहिए तो आपको दे देंगे। सो वी आर नॉट सपोर्टिंग स्मॉल एंड मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज। लाखों लोग देश में ऐसे हैं जो आर्टिजान हैं। ये आर्टिजान हैव इनबिल्ट टैलेंट पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशंस टू जनरेशंस। उनके पास मार्केटिंग स्किल्स नहीं है, सो पढ़े लिखे लोग उनसे जुड़ते क्यों नहीं है टू हेल्प देम इन मार्केटिंग। जहां भी आप देखिए देश में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं और हमारे वहां तो पॉपुलेशन इज यंग। टू मी वी आर द वर्कफोर्स फॉर द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इंडिया। अब देखिए इसराइल में दे वॉन्टेड टू हायर सम पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल वेर लाइंड अप टू गो टू इसराइल। शेम दैट दीज पीपल कैन नॉट गेट जॉब्स इन द कंट्री, शेम दैट दे हैव टू लुक desperately for jobs outside. I know there are millions of jobs within the country, लेकिन उस पर बराबर ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार ने प्रॉमिस की थी कि हम 2 मिलियन जॉब्स और 20 मिलियन जॉब्स क्रिएट करेंगे एवरी ईयर, कुछ नहीं हुआ, उसकी तो कोई बात ही नहीं कर रहा। लेकिन कोई टेंपल बनाया तो उसके पर पूरा देश लगा पड़ा है। अब कैसे समझाए लोगों को? और जो कुछ कहते हैं तो हमारे पर टूट पड़ते हैं सब लोग, आपने ये कहा, आपने वो कहा, झूठ बोलते हैं सब। इसमें देश का कैरेक्टर बदल गया है। हमें तो बहुत चिंता होती है कि गांधी जी का देश इतना झूठ बोलता है, देश के लीडर्स लोगों को उल्लू बनाते हैं और लोग उसमें जुड़ भी जाते हैं। इट शोज लैक ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑल्सो अबाउट मैनर्स, कैरेक्टर, वैल्यूज, मॉरल्स, एथिक्स, डिसिप्लिन, क्रिएटिविटी, एनालिसिस। एजुकेशन इज अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ये तो कोई है ही नहीं ना। अब आपने स्कूल में से एवोल्यूशन थ्योरी निकाल दी और लोग कुछ नहीं कहते, ये कैसा देश है कि हम एवोल्यूशन थ्योरी में नहीं मानते और ऐसा मानते भगवान ने हमें बनाया है। कमाल की बात है। आप पीरियोडिक टेबल स्कूल से निकाल देते हैं तो यह हमें कहता है कि आप एंटी साइंस हैं, आप एंटी टेक्नोलॉजी हैं। और फिर प्लेन में बैठ के आ गए तो बोले हम तो टेक्नोलॉजी वाले हैं। सो ये सब दिखावा है, इट्स ए शोमैनशिप, सब्सटेंस नहीं है किसी में। हम देखते हैं सब लीडर्स को, उनके मुंह से पता चलता है कि बिल्कुल अज्ञान लोग हैं, हमें उन्हें बोलने की भी जरूरत नहीं, सुनने की भी जरूरत नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज बताती है हमें कि घमंड से भरे हैं, झूठ से भरे हैं। वो क्या बच्चों को सिखाएंगे, तो हमें बहुत दुख होता है, लेकिन क्या करें।
सर आपने बहुत मुद्दे की बात कही। एक चीज में मैं सीधा मेरे एक्सपीरियंस की वजह से आपके साथ जुड़ सकता हूं। गुजरात जब अलग राज्य हुआ द्विभाषी मुंबई से, तब हम 8वें नंबर पे थे सर देश में, इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट्स में। गुजरात 8वें नंबर से 1990 में दूसरे और इवेंचुअली फर्स्ट नंबर पे आया थैंक्स टू द माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। उस समय गुजरात में कोई बड़ी इकाइयां नहीं थी। बड़ी इकाइयां कौन सी थी? कुछ बड़ौदा में थी, कुछ राजकोट में थी, कुछ अहमदाबाद में थी, उसको छोड़ के बड़ी इकाइयां नहीं थी। आज का जो रिलायंस है वो 3,68,000 रुपए की कैपिटल से नरोदा में पैदा हुआ, निर्मा 30,000 से शुरू हुआ, कैडिला वगैरह 1,00,000 रुपए की कैपिटल से शुरू हुआ। उस समय जो बोया गया था सर, उससे आज ये वटवृक्ष बने हैं। अब हमने ये वाइब्रेंट गुजरात के नाम पे सब बंद कर दिया। अब कौन सा नंबर वन आना है? आप नंबर वन हो, आपके वहां आपने बिल्कुल सही कहा सर। इन्होंने क्या किया कि स्मॉल इंडस्ट्री की व्याख्या भी बदल दी कि आप अगर 200 करोड़ का टर्नओवर करते हैं तो इधर स्मॉल इंडस्ट्री। जब 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला इंसान वो स्मॉल इंडस्ट्री में आता है क्या? मगर हमारा पूरा प्रायोरिटी जो था वो बदल गया है। और आपकी बात बिल्कुल सही है, पर यूनिट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर मैक्सिमम जॉब भी आपको क्रिएट करना है, मिनिमम इंफ्रास्ट्रक्चर से शुरू करना है, मिनिमम न्यूसेंस क्रिएट करना है, तो माइक्रो एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ओनली आंसर।
एब्सोल्युटली, एंड इट हैज टू बी बॉटम अप डेवलपमेंट एंड नॉट टॉप डाउन।
वेरी राइट सर। सो दैट इज समथिंग वेयर वी आर गोइंग एब्सोल्युटली। ठीक चल रहे थे तो हम फिर वो रास्ते से कहीं और अब जाने लगे हैं। अब बड़े बड़े तमाशे होते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, ये बड़े बड़े एमओयूज होते हैं, उसमें कई तो
कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता एट द एंड, झूठ, सब झूठ।
ये सिर्फ झंडा है।
बिल्कुल बिल्कुल सब झूठ, और लोग मानते हैं। मुझे तो समझ में, अब देखिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल दूं। जब हम स्टूडेंट थे बड़ौदा यूनिवर्सिटीज में इन 1950s early 60s, इट वॉज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज विथ इंग्लिश मीडियम, ग्रेट प्रोफेसर्स, हाई स्टैंडर्ड्स, और इतने सारे लोग वहां से डिग्री लेके देश देश में पहुंचे, दुनिया के सब देश में। मैं आपको बताऊं कि शिकागो में प्रोबेबली देर आर 1,000 डॉक्टर्स फ्रॉम बड़ौदा यूनिवर्सिटी, मेडिकल डॉक्टर्स।
यस सर।
अब देखिए, एक डॉक्टर को पढ़ाने में यहाँ पे शायद अब $1 मिलियन खर्चा होता है मिनिमम। देश ने, बड़ौदा यूनिवर्सिटी ने शिकागो को खाली 1000 डॉक्टर दिए हो तो कितना बड़ा दान दिया है देश, सोचिए आप। अब वही बड़ौदा यूनिवर्सिटी इतनी बदल गई है अभी, द क्वालिटी ऑफ टीचर्स, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हैज कंप्लीटली चेंज्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। कौन वाइस चांसलर बनेगा, कौन सा स्टूडेंट यूनियन किसका होगा, तो एजुकेशन पे ध्यान कम दिया गया है और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पॉलिटिसाइज हो गई है सब जगह। हमें दुख होता है जब आप देखते हैं बड़ौदा यूनिवर्सिटी को अब।
मुझे भी आर्ट आर्ट कॉलेज प्राप्त होता है उसको नजदीक से देखने का।
बिल्कुल, हमारी आर्ट कॉलेज थी, हमारी म्यूजिक कॉलेज थी, व्हाट एन इंस्टीट्यूशंस वी हैड इन बड़ौदा। I feel sorry that we have basically destroyed a lot of this stuff and there is no way we can recover from it in the short term. हाँ बताइए। Sorry, go ahead.
सर एक बात आखिरी आपसे, क्योंकि आपसे बात तो होती रहेगी, एक एक ही दिन में सब खत्म नहीं करना है, मगर अभी जॉर्जिया द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ IMF, उन्होंने एक स्टेटमेंट अपने ब्लॉग में रखा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब हर जगह पहुंच जाएगी और जो विकसित देश है वहां 60% और जो विकासशील देश है भारत जैसे वहां 30% नौकरियां खा जाएगी। अगर ये होता है तो सर भारत जैसे देश का क्या हाल होगा, क्या आप मानते हैं इस आशा, क्योंकि कंप्यूटर्स जब आने वाले थे तभी भी सर ये एक दहशत डाली गई थी कि कंप्यूटर के आने से जॉब में कटौती हो जाएगी, कई यूनियंस कंप्यूटर के सामने रोड पे उतर आए थे, यही मॉल जब आए तब यही बात हुई थी। तो आज जो जॉर्जिया ने बात की है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, क्या इतनी सारी संख्या में नौकरियां में कटौती आएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से?
देखिए, जब भी नई टेक्नोलॉजी आती है कोई भी चीज में, इट चेंजेस जॉब्स, पुराने जॉब खत्म होते हैं, नए जॉब शुरू होते हैं। सो टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इज अबाउट रीटूलिंग एंड रीट्रेनिंग, इट इज नेवर अबाउट एलिमिनेशन। जब कंप्यूटर आया तब सब यही कह रहे थे, ऑटोमेशन आया यही बात थी, जब मशीन टेक्नोलॉजी आई वही बात थी। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं, जब ऑटोमेटिक डायलिंग वाज इन्वेंटेड, इसी पहले क्या था कि आपको किसी को बताना है ऑपरेटर को कि हमें 4 नंबर पे जोड़ दीजिए, सो ऑपरेटर एक केबल लेके 4 नंबर पे आपको जोड़ेगी। उसके बाद आया ऑटोमेटिक डायलिंग, सो एवरी पर्सन बिकेम टेलीफोन ऑपरेटर। उस वक्त अमेरिका में सब ऑपरेटर स्ट्राइक पे गई और बोला कि ऑटोमेटिक डायलिंग मत करिए क्योंकि इससे तो हमारा जॉब चला जाएगा। अगर हमने उनको सुना होता आज, तो एवरी ह्यूमन बीइंग ऑन द प्लैनेट, ऑल 8 बिलियन पीपल वुड बी टेलीफोन ऑपरेटर्स। दैट इज द नंबर ऑफ कॉल्स वी जनरेट टुडे। हमने जब इंडिया में राजीव गांधी के टाइम में रेलवे टिकट को कंप्यूटराइजेशन किया, इतना सारा विरोध था उस वक्त, बोलिए क्या कर रहे हैं आप लोग, हमें लोग गालियां देते थे कि इनको कोई पता नहीं देश का क्या होने वाला है, ये सब अमेरिका से आए कंप्यूटर बॉयज हैं। सब बीजेपी नेता जो हैं आज वो सब क्रिटिसाइज करते थे कि ये लोग उल्टे रास्ते पे चढ़ गए हैं, देश में जॉब खत्म कर देंगे। वही कंप्यूटर ने देश को आज दुनिया में आईटी लीडर्स में खड़ा कर दिया। वही कंप्यूटर ने आईटी कंपनियां बड़ी बड़ी बनाई है इंडिया में। वही कंप्यूटर ने इंडिया के लोग को परदेश भेजा सब जगह फॉर जॉब्स, एंड वी आर नोन एज द आईटी पावर हाउस। सो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है वैसे वैसे जॉब ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। पहले ब्लू कॉलर जॉब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ विथ ऑटोमेशन कंप्यूटर्स, अब जो होने वाला है विथ एआई इट्स गोइंग टू बी व्हाइट कॉलर जॉब ट्रांसफॉर्मेशन। क्लर्क, अकाउंटेंट, लॉयर, ऑफिस वर्कर्स, पीपल हु फिल फॉर्म्स, ऑल दैट विल गो अवे, इट बी ऑल डन बाय एआई, बट देयर विल बी न्यू जॉब्स, देयर विल बी न्यू वे ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो आइडिया है जॉब का कि यू हैव टू वर्क 40 आवर्स ए वीक टू अर्न लिविंग, दैट विल चेंज। यू विल हैव मोर लीजर टाइम, यू विल हैव मोर टाइम टू ट्रैवल, मोर टाइम टू एंजॉय लाइफ, एंड यू विल बी एबल टू फीड योर सेल्फ विद 20 आवर्स, मे बी 30 आवर्स, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। सो वी आर लिविंग इन एन एरा ऑफ सरप्लस। अभी तक क्या था कि वी वर लिविंग इन एन एरा ऑफ स्कैर्सिटी। तो इससे लोगों का दिमाग ऐसा ट्रेन हो गया है कि सब एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं कि हमें ज्यादा चाहिए, हमें ज्यादा चाहिए। द वॉर्स आर ऑल अबाउट रिसोर्सिस, बट वी मस्ट रियलाइज दैट वी लिव इन एन एरा ऑफ सरप्लस। वी कैन प्रोड्यूस एनीथिंग, वी हैव टू डिसाइड व्हाट इज दैट वी वॉन्ट टू प्रोड्यूस। We can feed 8 billion people, we'll be able to feed 10 billion people. But there are still hungry because we can't deliver food to them in time, at the right place, to the right people. क्योंकि उसका टेक्नोलॉजी में उसका बराबर उपयोग नहीं किया गया है। So I would not worry about AI. I would worry about transformation of jobs. I would worry about retraining and retooling our industry. I would worry about catching up on AI. And there is no sense in training our people for the old jobs. And आपने पहले बताया था, आपके प्रश्न में आपने पूछा था कि education relevant है job के लिए। वो प्रश्न फिर से पूछना है कि AI के जमाने में कैसा education चाहिए। अब एआई की खूबी क्या है कि जो सर्च इंजन है वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, लेकिन एआई गिव्स यू नॉलेज फ्रॉम इंफॉर्मेशन। अब एआई को बोलिए कि 50 किताब पढ़ ले और आपको 50 किताब की समरी दे दे, वो एक मिनट में सब हो जाएगा। 50 किताब एआई एक मिनट में पढ़ लेंगे, 2000 किताबें वो एक मिनट में पढ़ लेंगे, आप नहीं पढ़ सकते वो। सो एआई का फायदा क्या है कि योर नॉलेज बेस इज गोइंग टू इंक्रीज सब्सटेंशियली, यू विल बी एबल टू गेट आंसर्स क्विकली, इट इज जस्ट द बिगिनिंग नाउ, एंड आई एम श्योर इन नेक्स्ट 10 इयर्स एआई विल हैव ह्यूज इंपैक्ट ऑन आवर एजुकेशन, हेल्थ, गवर्नेंस, agriculture, industry, banks, you name it. So the key question to ask today is, what kind of education we need in AI era? AI mein most important thing is to ask right questions. Are we being taught to ask right questions? और वी आर बीइंग टॉट टू फाइंड राइट आंसर्स. इफ राइट आंसर्स कैन बी फाउंड बाय एआई, द टैलेंट वुड बी रिक्वायर्ड टू आस्क राइट क्वेश्चंस एंड नॉट फाइंड राइट आंसर्स. बड़ा सीधा है ये, बट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. यूनिवर्सिटी में वी नेवर टीच पीपल हाउ टू आस्क क्वेश्चंस. हमारे वहां रिसर्च बहुत कम होती है. वी डोंट एक्सप्लोर न्यू फ्रंटियर्स एज वेल एज वी शुड. सो एआई की एजुकेशन पे क्या इंपैक्ट होगी, वो एक बहुत बड़ा सवाल है और वो सवाल अभी पूछना है. सो यू आस्क द राइट क्वेश्चन कि एआई से सब बदल जाएगा, लेकिन आर वी रेडी फॉर इट? हम तैयार हैं उसके लिए अभी नहीं. हम वही करते हैं जो सब दूसरे लोग करते हैं, हम कॉपी करते हैं. अमेरिका में एआई में ये हो रहा है, हम भी वही करेंगे. वी नीड टू लर्न टू क्रिएट इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, बॉटम अप डेवलपमेंट एंड नॉट टॉप डाउन. डिसेंट्रलाइजेशन, इंडियन टैलेंट, इंडियन कैपेबिलिटीज, बिकॉज वी आर ए नेशन ऑफ ए 1.5 बिलियन पीपल एंड दैट्स द चैलेंज.
सर फाइनल क्वेश्चन, जस्ट अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन बट वेरी शॉर्ट आंसर. वी आर सम ऑफ द मेजर इश्यूज वी आर गोइंग टू फेस इट अपीयर्स इज गोइंग टू बी जॉब सिक्योरिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, water scarcity and water security,
food security,
energy security and energy efficiency. Sir, how are we going to cope up with it, with the archaic system of decision making and kind of very slow pace at which the change enters the system and the society?
From my experience in the government for the last 40 years and in the industry and as a technocrat and as innovator, I have come to conclusion that we need to get more domain experts in the mainstream of decision making. I cannot make decisions on environment. I need environmental experts. I am not qualified to make decisions on energy. I need energy experts. Ministers are not qualified. Bureaucrats are not qualified. Don't ask IAS officer to make decisions on complex issues related to AI and others. So unless and until we get large number of domain experts to participate and create missions, and that's what we learned in Rajiv Gandhi era. Technology missions were required to solve bigger problems. We had technology mission on milk, telecom, immunization, water, literacy. All of these subjects require domain experts. So get 8, 10, 12 domain experts on a subject. Let them put together a business plan, program, empower them to implement, facilitate, fund them properly, give them autonomy, and things will happen. But if you put bureaucracy inside, government intervention, minister deciding based on the political agenda, then nothing will happen. So it is time to recognize that country needs domain experts in every field, and we are blessed with talent in every field. We are blessed with highly qualified people of all kinds, and we need to recognize them, we need to respect them, we need to empower them, and that's not happening. You hardly hear about power export. I cannot name 5 water experts in India. They are there, but we don't allow them to have visibility. This is a major, major challenge in India.
Very true, sir. Unless domain experts are given due freedom and the encouragement to work,
they know it. They know what needs to be done. If they don't, they will figure it out. Trust them. And let them make mistakes. It's okay.
Sir, how many years India will take to change? Final question, sir.
It is up to us. We have to decide whether we want to change or we don't want to change. If we are hung up on today's India, which is more caught up in religion, hate, which is caught up in dividing people, which is caught up in lies, misinformation, personal attacks, trolling, then we'll have a problem. We got to decide what kind of a nation we want to build. Do we want to build a nation which is more democratic and not authoritarian, which is more scientific, which is more, you know, focused on job creation? We'll have to, you know, have a different mindset. Today, we are on wrong track, according to me.
Yes. Sir, thank you so much. It was very interesting to have this interaction with you, sir. And I'm sure the knowledge which I am taking through you to the viewers of my small little channel is going to
You are a domain expert. Okay, you are one of the domain experts.
I don't know what am I, but I am trying to sort of do whatever best I can, and thanks to the support which I receive from the experts like you, sir. So thank you very much, sir. Have a nice time and may God bless you, sir.
Thank you. Look forward to it.
Yes, sir.
Bye.
Bye.